अध्याय 9 ग कार्ल हेनरिच मार्क्स। मार्क्स 1818 से 1883। मार्क्स इतिहास दर्शन का महान विचारक, देवदूत वैज्ञानिकता तथा नैतिकता का प्रबल समर्थक एवं इतिहास में सामाजिक विचारधारा का प्रबल समर्थक था। उसके इतिहास दर्शन को हेगेल के इतिहास दर्शन का संशोधित संस्करण माना जा सकता है। हेगेल ने इतिहास को द्वंद्वात्मक विकास के रूप में देखा था और स्वतंत्रता इसका लक्ष्य बतलाया था। मार्क्स ने भी इतिहास को द्वंद्वात्मक विकास के रूप में देखा, परंतु मार्क्स का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। इसके अनुसार इतिहास को घटनाएं विश्वात्मा के परिणाम स्वरूप नहीं घटती हैं, अपितु उनको प्रभावित करने वाले कुछ मूलभूत आर्थिक कारण होते हैं। मार्क्स ने भी इतिहास को द्वंद्वात्मक विकास के रूप में देखा, परंतु मार्क्स का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। उसके अनुसार इतिहास की घटनाएं विश्वात्मा के परिणाम स्वरूप नहीं घटती हैं, अपितु उनको प्रभावित करने वाले कुछ मूलभूत आर्थिक कारण होते हैं। जीवन वृत्त। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में प्रशिया के राइन प्रांत के टियर नगर में 5 मई सन 1818 ईस्वी में एक मध्यवर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स के पिता एक सफल वकील थे। बचपन से ही मार्क्स एक प्रतिभाशाली कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा वोन और बर्लिन में हुई थी। इंग्लैंड के अपने अध्ययन काल में ही उसकी रुचि इतिहास और दर्शन के प्रति हुई। 1843 ईस्वी में फ्रेडरिक एंजल से ऐतिहासिक संबंध स्थापित हुआ। मार्क्स और एंजल्स एक दूसरे के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। सितंबर 1844 में जब फ्रेडरिक एंजल्स फ्रांस आया तो उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। मार्क्स और एंजल्स ने सम्मिलित रूप से साम्यवादी साहित्य की रचना की। दोनों ने राजनीतिक कार्यों में एक दूसरे का सहयोग किया। उन पर अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति तथा जर्मन बौद्धिक क्रांति का गंभीर प्रभाव पड़ा। 1844 में पेरिस के अर्थशास्त्र के अध्ययन काल में ही वहां से निर्वासित होने पर भी 1848 तक इस अध्ययन को जारी रखा। मार्क्स अध्ययनशील व्यक्ति थे। उनके निजी पुस्तकालय में 1000 से अधिक पुस्तकें थीं, फिर भी वे उनके लिए पर्याप्त न थीं। इसीलिए वर्षों तक वे ब्रिटिश म्यूजियम में बैठकर अध्ययन करते रहे। राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और सभी देशों के साहित्य के क्षेत्र में उनका गहन अध्ययन था। चिंतन उनका सबसे बड़ा सुख था। उनका प्रिय वाक्य था, अच्छी तरह जानो फिर मानो। पृष्ठ संख्या 84। सन 1848 में जर्मनी में एक क्रांतिकारी आंदोलन किया और उसके शीघ्र समाप्ति के पश्चात मार्क्स इंग्लैंड चले गए और वहां जीवन पर्यंत अध्ययन में व्यस्त रहे। इंग्लैंड में मार्क्स और एंजल्स का जो साहचर्य बढ़ा वह इतना घनिष्ठ हो गया कि जीवन पर्यंत दोनों ने एक साथ रचनाएं की और क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। मार्क्स के जीवन का अंतिम समय बड़ी कठिनाई में व्यतीत हुआ। इस समय एंजल्स अपनी आय से मार्क्स की सहायता करते रहे। अंत में 14 मार्च 1883 ईस्वी में महान दार्शनिक मार्क्स का देहावसान हो गया। रचनाएं। मार्क्स अपने अध्ययन काल से ही लिखते रहे। उनके द्वारा रचित कृतियां निम्नलिखित हैं: एक, हेगेल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की एक प्रस्तावना; दो, पवित्र परिवार द होली फैमिली 1844; तीन, दर्शन की दरिद्रता पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847; दो, चार, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिकिस्ट मैनिफेस्टो 1848; पांच, आलोचनात्मक राजनीतिक अर्थशास्त्र; छह, उद्घाटन भाषण; सात, मूल्य कीमत और लाभ वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865; आठ, दास कैपिटल 1867; नौ, फ्रांस में गृह युद्ध द सिविल वार इन फ्रांस 1870-71; 10 गोथा कार्यक्रम द गोथा प्रोग्राम, 11 जर्मन विचारधारा द जर्मन आइडियोलॉजी। मार्क्स की विश्व प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल है, जिसका प्रथम भाग ही उन्होंने लिखा था। इस कृति के दूसरे एवं तीसरे भाग को मार्क्स के निधन के पश्चात एंगेल्स ने मार्क्स की टिप्पणियों के आधार पर पूर्ण कर प्रकाशित किया। मार्क्स ने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून, द स्पेक्टर तथा न्यू अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया में अनेक सारगर्भित लेख प्रकाशित हुए तथा इन्होंने एंगेल्स के सहलेखन में अनेक लेख और पुस्तकें लिखी। इतिहास दर्शन। मार्क्स हेगेल का सबसे श्रेष्ठ अनुयायी भी था और विरोधी भी। अनुयायी इसलिए कि उसने द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार किया, और विरोधी इसलिए कि उसने विज्ञानवाद को भौतिकवाद से विशिष्टतः स्थापित किया। मार्क्स दार्शनिक व्याख्याओं के स्थान पर ऐतिहासिक व्याख्या करना चाहता था। अपने एक पत्र में उसने कहा था कि उसने पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद की उत्पत्ति का निरूपण किया है। विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों में सदृश्य पृष्ठ संख्या 85 घटनाएं विभिन्न परिणामों को पैदा करती हैं। इन विभिन्न घटनावलियों के अर्थ उनके अलग अलग विकास के अध्ययन से पता चलता है। न कि किसी इतिहास दर्शन में उपलब्ध सार्वभौम नियम से। इस प्रकार का इतिहास दर्शन वस्तुतः अनैतिहासिक होता है। यदि हेगेल इतिहास दर्शन का प्रवर्तक था तो मार्क्स ऐतिहासिक समाज विज्ञान या समाज वैज्ञानिक इतिहास विश्लेषण का प्रवर्तक कहा जा सकता है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समाज की एवं नई विश्लेषण पद्धति इतिहास की ओर नई दृष्टि है। तथापि मार्क्स के अनुयायियों ने विश्व इतिहास में एक निश्चित सामान्य क्रम को स्वीकार किया है। चेस्नो को हिस्टोरिकल मैटियलिज्म पृष्ठ 512 से 518, लेनिन ने इस दृष्टि या पद्धति के दार्शनिक पूर्वाम्युपगमों को स्वीकार पूर्वक व्याख्या की है। फलतः मार्क्स का आग्रह ऐतिहासिक विश्लेषण की और उसकी एक विशेष पद्धति पर है। उसकी व्याख्या सारणी एक विशेष दार्शनिक दृष्टि के ऊपर आधारित है। इतिहास की अवधारणा। कार्ल मार्क्स ने एक बार अपने अध्यापक से पूछा था कि क्या लोग सोचते हैं कि मनुष्य का प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान तथा उद्योग से संबंध विच्छेद करके इतिहास का एक शब्द भी समझा जा सकता है। क्या उनका विश्वास है कि किसी युग के उद्योग उत्पादन के साधन संबंधी ज्ञान के अभाव में अतीत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? इतिहास को इन तत्वों से पृथक करने का तात्पर्य आत्मा को शरीर से, अपने को विश्व से अलग करना होगा। इस प्रकार इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान तथा उद्योग से अलग करना होगा। मार्क्स के इतिहास अवधारणा का आधार आर्थिक सिद्धांत है। इतिहास की आधारशिला नियतिवाद है। इसका स्वरूप ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की अपरिहार्यता है। यही इतिहास का कारण है। सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण आर्थिक रूप होता है। मार्क्स ने स्वीकार किया कि विचार, संस्थाएं, राजनीति, धर्म तथा संस्कृति और आर्थिक कारण प्रभावित करते हैं। मार्क्स का विचार है कि विचारक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक भी आर्थिक कारणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण का कारण समुद्री व्यापारिक संपर्क, समुद्री मार्गों की खोज, नवीन उद्योग व्यापार, जलयानों में सुधार आदि थे। मार्क्स का विश्वास था कि ऐतिहासिक प्रगति का मूल कारण प्राचीन तथा नवीन, पृष्ठ संख्या 86, सामाजिक संगठन के बीच संघर्ष होता है। वाद तथा प्रतिवाद के द्वंद्व के परिणाम स्वरूप साम्यवाद का उदय होता है। साम्यवाद से ही नवीन इतिहास का प्रारंभ तथा प्राचीन प्रथा का अंत होता है। साम्यवादी इतिहास का मानववाद है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य सतत प्रयत्नशील है। वर्ग संघर्ष को उन्होंने इतिहास की शक्ति स्वीकार किया है। मार्क्स के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य की विजय इतिहास का विकसित स्वरूप है। सामाजिक व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन को इतिहास की गति स्वीकार करते हैं। उत्पादन व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन की तीन अवस्थाएं हैं, दास प्रथा, सामंतशाही प्रथा, पूंजीवाद। पूंजीवादी इस परिवर्तन का चरमोत्कर्ष है। मार्क्स की इस अवधारणा ने सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में अन्वेषण की नवीन विधाओं का विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया है। आधुनिक इतिहास अवधारणा पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आलोक में कहा जा सकता है कि इतिहास का वास्तविक आधार उत्पादन की प्रक्रिया है। यह जीवन के लिए सरल भौतिक उत्पादन से प्रारंभ हुई, उसके बाद यह निरंतर जटिलतर होती चली गई। उत्पादन के रूप द्वारा नागरिक समाज के विभिन्न स्तर तैयार किए जाते हैं। धर्म दर्शन नीति शास्त्र आदि के रूप में चेतना के जो विभिन्न रूप उभरते हैं वे भी उत्पादन की प्रणाली से प्रभावित होते हैं। इस मत के अनुसार विचारों की रचना के आधार पर व्यवहारों को स्पष्ट नहीं किया जाता, वरन विचारों की रचना को भौतिक व्यवहार के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। मार्क्स ने माना है कि इतिहास के विकास में निर्णयात्मक उत्पादन निर्णायक तत्व उत्पादन की शक्तियां हैं। कार्ल मार्क्स की भौतिक दृष्टि एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद। भौतिकवाद के मुख्य सिद्धांत मार्क्स और एंगल्स के अभिलेखों के आधार पर भौतिक दर्शन के निम्नलिखित सिद्धांत निश्चित किए जा सकते हैं। एक, यथार्थवाद। किसी वस्तु या तथ्य का अस्तित्व उससे संबंधित चेतना या अनुभूति पर निर्भर नहीं है, वरन अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है। देश, काल, हेतु आदि उसी समय चेतना के स्वरूपों का स्पष्टीकरण कर सकते हैं जब वे भौतिक तथ्यों के संबंधों को व्यक्त करें। दो, द्वंद्ववाद। मार्क्स ने हेगेल का द्वंद्ववाद तो ग्रहण किया किंतु इसका आशय एकदम बदल दिया। मार्क्स के अनुसार भाव मनः पटल पर भौतिक जगत की छाया से उत्पन्न होते हैं, जगत से पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अतः वाद प्रतिवाद और पृष्ठ संख्या 87 संवाद की प्रक्रिया भौतिक जगत की गति को व्यक्त करती है जिसका प्रतिबिंब मन की चिंतन पद्धति में व्यक्त होता है। तीन, नियतिवाद। यद्यपि संहार में आकस्मिक घटनाएं भी होती हैं, यद्यपि संसार में आकस्मिक घटनाएं भी होती हैं, किंतु मुख्यतः इसकी गतिविधि नियमों के अनुकूल चलती है। इन नियमों को जान लेने पर इस गतिविधि के आगामी रूप की गवेषणा की जा सकती है। इतिहास की प्रक्रिया एक निश्चित लक्ष्य को लेकर एक निश्चित दिशा में चल रही है जो अटल, अचल और अनिवार्य है। चार, प्रगतिशील विकासवाद। भौतिक तत्वों का निरंतर विकास और परिवर्तन हो रहा है। मात्रा के भेद से गुण का भेद उत्पन्न हो जाता है। जैसे जैसे तत्वों के संबंधों और मात्राओं में अंतर होता जाता है वैसे वैसे नवीन गुणों का आविर्भाव होता है। अतः प्रत्येक गुण को अंतिम शाश्वत तत्वों के संबंधों द्वारा समझना असंभव है। इस गुण की पृष्ठभूमि में तत्वों का जो मात्रात्मक संबंध निहित है वही उसके स्वरूप का निर्णायक और उदाहरण के लिए भौतिक नियम निर्जीव जगत पर लागू होते हैं। इस जगत के तत्वों के विभिन्न मात्रात्मक संबंधों से जीव जगत का विकास होता है जिनकी व्याख्या जीव शास्त्र बायोलॉजी द्वारा होती है। किंतु जीव शास्त्र भौतिक शास्त्र पर निर्भर होते हुए भी उससे भिन्न होते हैं। इसी प्रकार जीव जगत के तत्वों के संबंध विपर्यय और विकास से मानव की मानसिक क्रिया की सृष्टि होती है जिसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है, किंतु मनोविज्ञान जीव शास्त्र पर आधारित होते हुए भी उससे भिन्न है। इस प्रकार प्रत्येक गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन का अनुसरण करता है। इस सिद्धांत को इमर्जेंस का सिद्धांत कहते हैं। पांच, कालवाद। समस्त विश्व परिवर्तनशील है, काल परिवर्तन का मानदंड है। भाव और विचार भी भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहते हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ऐतिहासिक है। भौतिक विचारधारा ऐतिहासिक चेतना से ओतप्रोत है। छह, पारस्परिक प्रक्रिया का सिद्धांत। ज्ञान कोई विशुद्ध चिंतन नहीं है, वरन मन और जगत की पारस्परिक क्रिया की उपज है। व्यक्ति और जगत, समाज और संसार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 7 ऐतिहासिक भौतिकवाद। सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक क्रांतियां मनुष्य के मस्तिष्क की उपज मात्र नहीं होते और न इसके द्वारा शाश्वत सत्य के साक्षात्कार से उत्पन्न होते हैं, वरन उत्पादन तथा वितरण की प्रक्रिया के बदलने से पैदा होते हैं। 8 भावों की सामाजिक पृष्ठभूमि, विचार, भाव, संस्कृति सब भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों के द्योतक हैं। कांत के दिंगान शिष्य जैसी कोई वस्तु नहीं है, न ही दैवी शक्ति का कोई अस्तित्व है। पृष्ठ संख्या 88। 9 विचार और आचार की एकता। सिद्धांत और व्यवहार, चिंतन और कर्म, विचार और आचार में मौलिक एकता है। मनुष्य प्रकृति और इतिहास की विशिष्ट समस्याओं के समाधान की पद्धति से ही सिद्धांत बनते हैं। सिद्धांत का उपयोग इसकी व्यवहारिकता से में सन्निहित है। विशुद्ध सिद्धांत काल्पनिक है। 10 क्रांति का जय घोष। चूंकि सिद्धांत का मूल्य व्यवहार में ही सन्निहित है, अतः सामाजिक ज्ञान का आशय सामाजिक परिस्थिति के सुधार की क्रिया में हाथ बांटना है, अतः प्रत्येक विचारक क्रांतिकारी है। इतिहास की भौतिक व्याख्या। मार्क्स एंगेल्स की भौतिक धारणा यह है कि सामाजिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक जीवन का स्वरूप मुख्यतः उत्पादन की विधि पर निर्भर होता है। इस विषय में मार्क्स का निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य है। मनुष्य जब उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं तो उनके कुछ निश्चित संबंध बन जाते हैं जो अनिवार्य और उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। यह उत्पादन के संबंध उत्पादन और भौतिक शक्तियों के विकास के स्तर के अनुरूप होते हैं। इन उत्पादन के संबंधों के समूह से समाज का आर्थिक ढांचा बनता है। यही वह आधारशिला है जिस पर वैज्ञानिक और राजनीतिक प्रासाद खड़े होते हैं और जिसके अनुरूप सामाजिक चेतना का विकास होता है। भौतिक जीवन में उत्पादन की विधि जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का निर्णायक होती है। अपने विकास के एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर उत्पादन की भौतिक शक्तियां उत्पादन के संबंधों से टकराने लगती हैं, अर्थात कानूनी शब्दावली में वे संपत्ति के संबंधों के विपरीत हो जाती हैं। ये संबंध उत्पादन की शक्तियों के विकास के रूप में न रहकर अनेक संबंध बन जाते हैं। तब सामाजिक क्रांति का युग आता है। आर्थिक आधार के परिवर्तन के साथ साथ समस्त विशाल प्रासाद जल्दी से बदल जाता है। स्थूल रूप से हम समाज के आर्थिक विकास की प्रगति को एशियाई प्राचीन सामंतशाही और पूंजीवादी समाज के गर्भ में उन उत्पादन की शक्तियों का विकास हो रहा है जो इस विरोध का समाधान करने की सामर्थ्य रखते हैं। यह सामाजिक निर्माण मानव इतिहास के प्रागैतिहासिक युग का अंतिम अध्ययन है। मार्क्स के सिद्धांत के निरूपण से यह प्रकट होता है कि आर्थिक उत्पादन और उपयोग के विधान से मानव इतिहास का स्वरूप निश्चित होता है। जब कोई आर्थिक विधान अपनी उपयोगिता से आगे निकल जाता है तो इसके स्थान पर दूसरा विधान आ जाता है। इस परिवर्तन में सामाजिक वर्गों का विरोध उग्र रूप धारण कर लेता है। शोषक और शोषित इस एक दूसरे के विरुद्ध उठ जाते हैं। प्रथम वर्ग प्रायः आर्थिक ढांचे को खड़ा रखने की चेष्टा करता है, पृष्ठ संख्या 89, और दूसरा वर्ग उसे उखाड़ फेंकने की जल्दी करता है। अतः वर्ग युद्ध भड़क उठता है। इस युद्ध विरोध और संघर्ष से एक नूतन व्यवस्था का जन्म होता है। मानव इतिहास वर्ग युद्धों का वृत्तांत है। नियतिवाद। इतिहास में नियतिवाद एक विश्वास है कि जो कुछ भी घटित होता है उसके निश्चित कारण होते हैं, जिसके अभाव में घटना विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। इसकी गतिविधि विधि नियमों के अनुकूल चलती है। इतिहास की प्रक्रिया एक निश्चित लक्ष्य को लेकर एक निश्चित दिशा में चल रही है जो अटल, अचल और अनिवार्य है। कार्ल मार्क्स का विश्वास ऐतिहासिक नियति अब अवश्यंभाविता में था। उन्होंने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की भूमिका में लिखा है कि अपनी आजीविका के सामाजिक उत्पादन में मानव जाति एक निश्चित एवं आवश्यक संबंधों में प्रवेश करती है जो उनकी इच्छाओं के पूर्ण स्वतंत्र है। इस प्रकार मनुष्य अपनी आजीविका के उत्पादन में ऐसे सामाजिक संबंधों में बच जाता है कि न चाहते हुए भी उसे इस सामाजिक संबंध को स्वीकार करना पड़ता है। समाज में दास प्रथा को कोई नहीं चाहता, परंतु आजीविका के साधन में सामाजिक अनिवार्यता के कारण सभी को स्वीकार करना पड़ता है। इसी प्रकार पूंजीपति तथा श्रमिकों का संबंध सामाजिक अनिवार्यता का परिणाम है। न चाहते हुए भी अधिकांश श्रमिकों को इस प्रकार का संबंध स्वीकार करना पड़ता है। कार्ल मार्क्स का यह संकेत ऐतिहासिक नियति अवश्यंभाविता एवं अनिवार्यता को स्वीकार करना है। जिस प्रकार धार्मिक अवधारणा अथवा युग चक्रवादी इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में अवश्यंभाविता स्वीकार करते हैं, मार्क्स का नियतिवादी सिद्धांत सभी क्षेत्रों में है। द जनरल कैरेक्टर ऑफ द सोशल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ डिटरमाइंड बाय द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ। द्वंद्वात्मक का अर्थ द्वंद्ववाद का अंग्रेजी रूपांतर डायलेक्टिकस यूनानी शब्द डायलेगो से बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या तर्क वितर्क करना। प्राचीन काल में द्वंद्ववाद तर्क वितर्क के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क या युक्ति में विरोधों को बताकर तथा इनका समाधान करके सत्य तक पहुंचाने की कला थी। प्राचीन काल में ऐसे दार्शनिक थे जिनका विश्वास था कि विचारों में विरोधों का प्रकट होना तथा विपरीत मतों का संघर्ष सत्य तक पहुंचाने का सबसे पृष्ठ संख्या 90 उत्तम उपाय है। बाद में चिंतन की द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए किया जाने लगा। इस प्रणाली के अनुसार प्राकृतिक घटनाएं सदैव गतिशील रहते हुए निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और प्रकृति में विरोधों का विकास या प्रकृति में विरोधी शक्तियों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। द्वंद्ववाद की धारणा कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। द्वंद्ववाद की धारणा मार्क्स ने हेगेल से ग्रहण की थी। सन 1836 में जब मार्क्स ने बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तब हेगेल की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु हेगेल द्वारा प्रतिपादित आत्मा एवं द्वंद्ववाद से संबंधित विचारों का प्रभाव विश्वविद्यालय पर छाया हुआ था। मार्क्स ने भी इस विश्वविद्यालय में हेगेल के विचारों का गहन अध्ययन किया और युवा हेगेलवादी संगठन के सदस्य बन गए। हेगेल के आदर्शवादी विचारों के स्थान पर मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। हेगेल का द्वंद्ववादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तकों में लिखा जाता है। हेगेल ने समस्त मानसिक और सामाजिक विकास को विरोधी शक्तियों के संघर्ष का परिणाम माना है। हेगेल के विचार से आत्मा सदैव प्रकृति पदार्थ से विरोध करती है। प्रकृति बंधन है, आत्मा स्वतंत्रता। कानून, नैतिकता और शासन व्यवस्था आदि वे उपकरण हैं जिनके द्वारा आत्मा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करने के आनंद का अनुभव करती है। आत्मा सदैव स्वयं से संघर्ष करती है। संकल्प और विकल्प आत्मा में निरंतर चलते रहते हैं। इन संकल्पों और विकल्पों के संघर्ष से एक नवीन स्थिति उत्पन्न होती है और आत्मा का विकास होता है। हेगेल का कथन है कि आत्मा स्वयं से युद्ध करती है। अपनी सबसे भयानक बाधा के रूप में उसे स्वयं का ही सामना करना पड़ता है। उसका विचार है कि जब मस्तिष्क किसी वास्तविकता का अनुभव करता है तो वह परिवर्तन विचार का रूप धारण कर लेता है। हेगेल की मान्यता यह है कि विचार कोई स्थिर वस्तु नहीं है, विचार की प्रकृति गतिशील है, यह एक प्रक्रिया है। विचार की प्रक्रिया से मस्तिष्क में कोई धारणा आइडिया जन्म लेती है। इस धारणा के पैदा होते ही विचार विकास करता है और तुरंत कोई विपरीत धारणा उत्पन्न होती है। अब मस्तिष्क में इन दो विरोधी धारणाओं में संघर्ष होता है और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक तीसरी धारणा उत्पन्न होती है, जो पहली दोनों धारणाओं में सामंजस्य करके नवीन विचार या विकसित विचार को जन्म देती है। इस प्रकार विचार निरंतर प्रगतिशील हो रहता है। हेगेल ने धारणा, विपरीत धारणा और सामंजस्यपूर्ण धारणा को क्रमशः वाद, थीसिस, प्रतिवाद, एंटीथीसिस और संवाद, सिंथेसिस कहा है। इन शब्दों को हम संकल्प, थीसिस, विकल्प, एंटीथीसिस, थीसिस और समन्वय, सिंथेसिस भी कह सकते हैं, जिनके आधार पर आत्मा के विचार का और आदर्श का विकास होता है। हेगेल का विचार है कि प्रत्येक वाद या संकल्प, पृष्ठ संख्या 91, एक प्रतिवाद या विकल्प को जन्म देता है। इन दोनों में द्वंद्व होता है और फलस्वरूप इनका समन्वित रूप संवाद के रूप में विकसित होता है, और इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और नवीन विचारों और मान्यताओं का विकास होता है। हेगेल के अनुसार विचार निरंतर प्रगति की ओर उच्चतर एकता की दिशा में परिवर्तित होते रहते हैं। मार्क्स का द्वंद्ववाद एक वैज्ञानिक धारणा। मार्क्स के दर्शन का आधार भी द्वंद्ववाद है, किंतु मार्क्स का द्वंद्वात्मक विश्लेषण हेगेल के द्वंद्वात्मक द्वंद्ववाद का अनुकरण नहीं। यद्यपि मार्क्स की द्वंद्वात्मक विचारधारा का मूल स्रोत हेगेल ही माना जाता है और हेगेल के विचार दर्शन से प्रेरणा पाकर ही मार्क्स ने सामाजिक विज्ञान की द्वंद्वात्मक व्याख्या की, फिर भी हेगेल का द्वंद्ववाद कल्पना, आदर्श, आध्यात्मिकता और गुणात्मक तथ्यों पर आधारित है, जबकि मार्क्स ने द्वंद्ववाद को वास्तविक जगत की ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या के साधन के रूप में प्रयोग किया। मार्क्स ने स्वयं कहा कि हेगेल ने द्वंद्ववाद को रहस्यात्मक बना दिया। हेगेल ने द्वंद्ववाद को सर के बल खड़ा किया है, मैंने उसे पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया है। मार्क्स के अनुसार भौतिक संसार वह वास्तविकता है जो इंद्रिय ग्राह्य है और अपने अस्तित्व के लिए मनुष्य जिसमें कार्य करता है, भोजन प्राप्त करता है और जिसका आश्रय लेकर वह इस योग्य बनता है कि विचारों को जन्म दे सके। मार्क्स का कथन है कि मनुष्यों की मानसिक चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी मानसिक चेतना को निर्धारित करता है। मार्क्स का द्वंद्ववाद यथार्थ जगत के अनुभव सिद्ध तथ्यों पर आधारित है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता को सामने रखकर वह आदर्शवाद तथा आत्मा के संघर्ष में विश्वास नहीं करता। वह तो उन भौतिक संघर्षों को अपने सिद्धांत का आधार बनाता है जो अवलोकन और अनुभव पर आधारित है और ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध किए जा सकते हैं। वह विज्ञान में कल्पना को स्थान नहीं देता। उसकी मान्यताएं वास्तविक जगत में रहने वाले उन व्यक्तियों से संबंधित हैं जो भौतिक दशाओं में कार्य करते हैं और उन कार्यों के द्वारा जीवन चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं और साधनों का उत्पादन करते हैं। उसने केवल उन्हीं तथ्यों को अध्ययन का आधार माना है जो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हो। मार्क्स और एंजल्स ने स्पष्ट लिखा है कि हम वास्तविक क्रियाशील मनुष्यों को लेकर चलते हैं और उनकी वास्तविक जीवन प्रक्रिया के आधार पर दर्शन प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार मार्क्स पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्रत्यक्षवादी वैषयिक अध्ययन का दावा करता है। वह अवलोकन के योग्य तथ्यों के संकलन से प्राप्त निष्कर्षों पृष्ठ संख्या 92 पर अपने सिद्धांत की व्याख्या करता है। वह समस्त प्रकृति को समाज की एक प्रक्रिया के रूप में देखता है जो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। मार्क्स ने हेगेल के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया है, उसके परिणामों को नहीं। मार्क्स ने इस पद्धति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया क्योंकि उसने वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों को आधार मानकर यह सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की कि संसार में प्रत्येक परिवर्तन का प्रमुख कारण द्वंद्व है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक दर्शन को भौतिक तथा वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया। उसने समस्त सामाजिक विकास को विचारों के संघर्ष का नहीं बल्कि भौतिकवाद भौतिक तथा आर्थिक संघर्ष का परिणाम बतलाया। मार्क्स का द्वंद्ववाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या अधिक सही शब्दों में भौतिक द्वंद्ववाद कहा जाता है, क्योंकि यह मस्तिष्क या आत्मा की कल्पनाओं और विचारों की व्याख्या पर आधारित न होकर वास्तविक जगत और मानवीय दशाओं के अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स ने हेगेल के द्वंद्ववाद को पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विचार का स्थान क्रिया ने ले लिया है और कल्पना का यथार्थ ने। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने केवल वैज्ञानिक खोज ही नहीं की, बल्कि भावी क्रिया का मार्ग भी प्रशस्त किया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं: वास्तविकता की जटिलता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रथम विशेषता यह है कि समस्त वास्तविक तथ्य अर्थात प्रकृति एक जटिल तथ्य है, जिसका निर्माण परस्पर संबंधित वस्तुओं और घटनाओं के द्वारा होता है। प्रकृति के ये तत्व परस्पर निर्भर हैं, अतः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रत्येक सामाजिक तथ्य को अन्य तथ्यों के संदर्भ रिलेशन में समझने की चेष्टा करता है। इसके लिए धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता है। वास्तविकता परिवर्तनशील है, चेंजिंग नेचर ऑफ रियलिटी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दूसरी विशेषता यह है कि वह संसार की प्रत्येक वस्तु को परिवर्तनशील मानता है। प्रकृति के लघुतम कण से लेकर महानतम वस्तुओं तक सब कुछ बदलता रहता है। कोई वस्तु स्थिर नहीं, प्रत्येक वस्तु गतिमान है, स्वरूप बदल रही है, विकास कर रही है, क्षीण हो रही है या समाप्त हो रही है। मनुष्य की प्रकृति भी उसकी भौतिक दशाओं के अनुसार गतिशील है। क्रांतिकारी परिवर्तन, रिवॉल्यूशनरी चेंज। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार परिवर्तन सरल रूप में नहीं होते, परिमाणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे संचित होते रहते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है जब एकदम विस्फोटक बिंदु आ जाता है और धमाके के साथ संपूर्ण गुणात्मक व्यवस्था बदल जाती है। पृष्ठ संख्या 53, विरोध की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह विश्वास करता है कि प्रकृति और समाज में निरंतर विरोध की प्रक्रिया चलती रहती है। प्रत्येक वाद थीसिस का प्रतिवाद एंटीथीसिस होता है और एक स्थिति में आकर संवाद के रूप में परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति या समाज का एक तथ्य विकास करता है, विस्तृत होता है, दूसरा उसका विरोध निगेशन करता है और अंत में दोनों का सम्मिलित या परिवर्तित स्वरूप एक नवीन स्थिति को प्रकट करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समाज का अध्ययन करने के लिए भिन्न भिन्न सामाजिक तथ्यों के इस विरोध का पता लगाता है। पदार्थ प्रमुख है, मैटर इज प्राइमरी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ अर्थात भौतिक प्रकृति को प्रमुख मानता है।